This is Suno India production. You can now listen to all our episodes on our Android and iPhone app. Download it now.
Reporting for this story was supported by MSF DNDI grant on neglected tropical diseases as part of Doctors Without Borders Media Fellowship. The fellowship encourages independent, impartial, and neutral reporting on health and humanitarian crises. The first time I saw the sandfly was in Kalaazar Medical Research Institute. They were stored in large transparent boxes with small openings, stuffed with cloth, through which the staffers can work with them. They look like specks of dust, really. This small fly, smaller than a mosquito, can wreak havoc in people's lives. It spreads the parasite, Leishmania donovani, that causes Kalaazar. Kalaazar can be fatal if not treated. The treatment of Kalaazar has advanced by leaps and bounds. You can hear more about it from the earlier episode. But we still do not understand the behavior of the sandfly completely. Hello, I'm Menaka Rao, reporting for this episode of the Suno India Show. In this episode, we shall focus on the key player in the Kalaazar transmission, the sandfly. I spoke to Dr. Rahul Chobe, an entomologist who works at Kalaazar Medical Research Institute. The laboratory is nestled between the staircase leading to the wards. It has more sandflies than humans in this institute. Rahul holds a PhD in entomology, that is studying insects, and has worked on vector biology. The vectors or insects that spread diseases are female mostly. Same is the case with sandflies too. Usually female insects bite humans or animals.
Only female.
Only female.
Only female.
अच्छा जैसे
मॉस्किटो जैसे मॉस्किटो हर जगह जितने भी आपको वेक्टर बॉर्न डिजीज मिलेंगे
क्यों ऐसे
क्योंकि जो फीमेल है उसका काम है जनरेशन को आगे बढ़ाना एग लेइंग और एग लेइंग के लिए ब्लड प्रोटीन ही उनको चाहिए इसीलिए मेल को उसकी जरूरत नहीं होती है इसीलिए मेल हमेशा प्लांट सैप पे जिंदा रहता है मेल को सिर्फ शुगर चाहिए होगा एनर्जी के लिए उसको स्पेशल प्रोटीन कुछ और चाहिए नहीं ताकि उसको एग डेवलपमेंट करना हो
द इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स स्टडिंग हाउ वेक्टर स्प्रेड्स द डिजीज शुड आइडियली बी ऑब्जर्व्ड इन लेबोरेटरी कंडीशंस इन कालाजार मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अ कॉलोनी ऑफ सैंडफ्लाइज वॉज डेवलप्ड आई आस्क हाउ दिस इज डन
कॉलोनी डेवलप करने के लिए हम वाइल्ड से ट्रैप लगाते हैं नेचर जैसे गांव-गांव में जाकर के जहाँ भी हमको रहता है वहाँ से हमने ट्रैप लगाए सैंड फ्लाइज
हम जब सैंडफ्लाइज दिखता तो नहीं है ना मतलब
दिखता है
हाँ अच्छा मुझे लगा माइक्रोस्कोपिक है
नहीं इट्स नॉट माइक्रोस्कोपिक यू कैन सी इट यस यू कैन सी इट दो द साइज इज 3 times लेसर देन मॉस्किटो बट यू कैन सी
मॉस्किटो ही छोटा है तो ये तो बहुत छोटा है मतलब दिख
नहीं मॉस्किटो से छोटा है
ध्यान
देंगे तो आपको दिखेगा हम लोगों को तो गांव में भी दिखता है
क्योंकि आप उस पे
उसी पे काम करते हैं वही चीज खोजने जाते हैं जब हम क्या होता है कि जब हम किसी चीज को कंसंट्रेट करके उसी पे चलते हैं तो हमको वही चीज नजर आती है फिर दूसरा चीजें हम छोड़ते चले जाते हैं इसीलिए तो गाँव में जाकर के हमने वहाँ पे लाइट ट्रैप लगाए लाइट ट्रैप को लेके आते हैं उसमें क्योंकि अब लाइट ट्रैप है तो अदर इंसेक्ट्स भी आते हैं हर एक चीज आता है उसमें जितने नेचर में इंसेक्ट्स अवेलेबल होंगे उस समय पर वहाँ पे वो सब आते हैं उसमें उसको लेके आते हैं यहाँ उसको शॉर्टिंग करते हैं
सॉर्टिंग
मतलब निकालना लाइव उसमें से केज में से हम उसको एक एक सैंडफ्लाई एस्पिरेटर से उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसमें फिर हम देखते हैं कि जो जो ब्लड फेडेड हैं या ग्रेविड फीमेल्स हैं
ग्रेविड मीन्स द इंसेक्ट हैज एन एग इन इट्स एब्डोमेन द की इज टू एंश्योर दैट द पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड More than 68,000 sandflies were caught in mud houses and cattle sheds in villages of Muzaffarpur district in 2015 from March to December. At the time, another entomologist called Shakti Kumar Singh was handling this operation.
Sandfly jaise hi emerge hogi pupa se. Emergence ke baad usko approximately 48 hours lagta hai apne aap ko establish karne ke liye, prepare karne ke liye for blood feeding. तो 48 आवर्स के दौरान वो क्या करेगी तो 48 आवर्स के दौरान वो कोई भी इंसेक्ट्स अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उनको शुगर चाहिए होगा शुगर नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनके लिए तो वो शुगर लेते हैं अब ब्लड फीड जब करेंगे ब्लड फीडिंग के बाद उनकी बॉडी में एक डेवलपमेंट होगा जब ब्लड डाइजेस्ट होगा, ब्लड डाइजेशन के बाद जो उससे प्रोटीन मिलेगा उनको, उससे वो एग डेवलप होगा उनके बॉडी में और फिर वो एग लेइंग के लिए जाएंगे। ठीक है, तो हमें कलेक्शन करते समय हम ये ध्यान देते हैं कि ब्लड फेड हो या ग्रेविड हो, क्योंकि ग्रेविड है तो वो तुरंत एग लेइंग के लिए एग की प्रोसेस में जाएगी, या फीमेल होगी तो एक या दो दिन बाद वो एग लेइंग के प्रोसेस में जाएगी, ताकि हमको जो है नेचर से अवेलेबल वाइल्ड पॉपुलेशन का जो एग मिलेगा और उस एग को फिर हम आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं कि वो हैच हो, उसमें फिर वो फर्स्ट इंस्टार में जाए, सेकेंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार, फोर्थ इंस्टार, प्यूपा एंड देन अडल्ट। इस तरह से करके हमने ये पॉपुलेशन बिल्डअप किया।
राहुल सेज दैट इट टेक्स अबाउट 10 टू 12 जनरेशंस फॉर सैंडफ्लाई कॉलोनी टू डेवलप। रैबिट्स वर यूज्ड फॉर ब्लड फीडिंग इन द लेबोरेटरी एंड इन द बिगनिंग ओनली अ फ्यू एग्स, अबाउट 10-20% ऑफ द एग्स कुड बी डेवलप फर्दर। To develop a self-sustaining colony took more than a year. By December 2015, the colony was self-sustaining. And more importantly, the colony of sandflies were no longer wild. They were certified free of infections and could be experimented upon. I saw the final product. There were many transparent acrylic boxes, say about a standard carton box size, full of sandflies. The sound in this room will sound a bit echoey, because this is a temperature and humidity controlled room.
जितना इनकी केयर होती है उतनी हम अपनी केयर नहीं कर पाते हैं। ये अभी 60 जनरेशन पे चल रही हैं। जैसे इसमें देखिए आपको एप्पल के स्लाइसेस दिख रहे हैं और ऊपर ऊपर कॉटन के बॉल्स हैं।
ये बॉल्स में क्या है?
ये शुगर सॉल्यूशन है।
अच्छा,
30% शुगर सॉल्यूशन है ये।
हाँ।
और नीचे हमने एप्पल के स्लाइस देते हैं ताकि उसको नेचुरल सुक्रोज भी मिलता रहे।
The boxes have an opening which is covered in a canvas-like cloth through which the staff use their hand to do various things like place their feed inside among other things.
ये ब्रश के साथ क्या कर रहे हैं?
ब्रश एक्चुअली लार्वा जो होता है ना, कभी कभी लार्वा उसमें से निकल जाता है। जैसे लार्वा निकल गया तो वो लार्वा को उठा करके उसमें अंदर रख लेते हैं ताकि वो प्यूपा में कन्वर्ट हो और वो अडल्ट।
हाँ हाँ हाँ, ओके। तो हार्डकोर पालना होगा।
The first such sandfly colony was developed in 1924 in the colonial era. A Kalazar commission was set up at the School of Tropical Medicine, Calcutta, to quote unquote resolve the important problem of Kalazar transmission. The sandflies were made to bite Kalazar patients and non-infected persons. The scientists found the parasite inside the gut of sandflies that had bitten Kalazar patients, confirming that the sandfly was the vector of Kalazar. I will link this paper in the references. Open it and see the sepia-colored pages of the scientific paper. I enjoyed it greatly. Now, this kind of study is called xenodiagnosis.
Xenodiagnosis. Xeno means foreign. Or a process. Diagnosis is a process.
Correct.
When we are exposing an uninfected organisms or an uninfected vectors to the infected tissues or organs for study the vector. जब हमने उसको लिए अनइन्फेक्टेड पॉपुलेशन,
मतलब वो आपका जो वेक्टर है वो अनइन्फेक्टेड,
वो अनइन्फेक्टेड होना चाहिए। इन्फेक्टेड ह्यूमन पे या टिश्यू पे, ह्यूमन हो या टिश्यू हो, जो भी इन्फेक्टेड होना चाहिए उस पे इसको फीड कराए। फीडिंग के बाद इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमारा वेक्टर है, इस वेक्टर के अंदर हमने पैरासाइट को देखे कि ये ले रहा है कि नहीं ले रहा, माइक्रोस्कोप, ये हमारा जीनो डायग्नोसिस होता है।
Another question that has been niggling researchers for a long time is whether PKDL spreads the disease, or rather how it spreads Kalazar. PKDL is post-Kalazar dermal leishmaniasis, a skin manifestation of Kalazar. Remember PKDL from our first episode? A few small studies were done in the colonial era to show that PKDL patients can infect sandflies. It was always a strong suspicion that PKDL caused outbreaks of Kalazar, especially after some gap years. One of the first major studies trying to understand the transmission of dynamics vis-a-vis PKDL was done in the 1980s following an outbreak in Bihar and Bengal. This study too was conducted by researchers from Calcutta School of Tropical Medicine, Manjulika Addy and Amitabha Nandi. They were trying to unravel a mystery actually. The cases were found in Katihar in Bihar and Malda in West Bengal, which were nearby districts. One can assume some movement of persons here. But cases in 24 Parganas were surprising as it was 300 to 400 kilometers away from these areas. Their field visits identified one PKDL patient from Bandipur village in 24 Parganas. Along with this patient, they added three more and fed the sandflies to their blood. Most of these were infected, again proving that sandflies can be infected with the parasite after biting PKDL patients. One of the first main studies after the advent of modern technology, that is RT-PCR and other molecular techniques, was done in Bangladesh, where with three PKDL patients, they managed to infect the sandflies that bit them. The study was admittedly limited, but it raised questions on the belief that macular and papular forms were less infective than nodular forms of PKDL. Macular looks like white spots or discoloration of skin, while papular looks like bumps on a skin. Nodular is a more advanced form which looks like large boils. The Bangladesh study showed that we could assume all PKDL patients can infect sandflies. This is where the science stood. We know PKDL patients infect sandflies, but the questions remain, to what extent? It was not clear what kind of patients were more infectious, Kalazar, patients of PKDL, and even among PKDL patients, what kind of patients were more infectious. Going back to Rahul, the entomologist in Muzaffarpur, one of the main reasons for developing the colony was trying to answer these questions.
हम जो है xenodiagnosis की process शुरू की, जो हमारे पास यहाँ patient आते हैं, उन patients पे हम उसको feed कराते हैं 30 minutes के लिए. हमारे पास feeding cup है, उस cup में उस sandflies को हम रखते हैं और उसको उसके हैंड पे और लेग पे दोनों जगह हम उसको जो है फीडिंग कराते थे. हाफ एन आवर के लिए फीडिंग होती थी.
कप मतलब
फीडिंग कप,
समझी नहीं.
हाँ, एक्चुअली अब सैंडफ्लाई को हम ऐसे ही तो नहीं ना छोड़ देंगे. कहीं भी नहीं छोड़ सकते हैं. वो फैल जाएगा, आपको फीड तो करेगा नहीं. फीडिंग करने के लिए उसको जब अपना एनवायरनमेंट मिलेगा, सब समस्या में मिलेगा, तब वो फीड करेगी. इसीलिए फीडिंग कराने के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए होगा जिसमें हम उसको रखें और वो हम यहाँ पे लगा सकें.
अच्छा,
तो उसको हम फीडिंग कप कहते हैं. वो एक्रेलिक कप बना हुआ रहता है, फीडर है, गोल एक सरफेस एरिया इतना बड़ा है. मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये जैसे फीडिंग कप है.
He shows me the cup. It's as big as one of those measuring cups for soap powder that you need to put in the washing machine. I know, strange example, but you get the picture.
ये एक just एक cup है और कुछ है नहीं. इसमें ये एक कपड़ा हम screen लगाते हैं इसमें.
The screen is like a fine muslin cloth, but has big enough pores for sandfly to bite.
Screen लगा लिए फिर?
ये हम screen लगा दिए. अभी screen हो गया कवर. अब इसके बाद इसमें एक ये भी है, यहाँ से ये स्पेस है, हम सैंडफ्लाई इसके थ्रू इसमें ट्रांसफर कर देते हैं.
अच्छा,
एस्पिरेटर से
इसके थ्रू, इसके थ्रू वो फीड कर पाएगी.
हाँ, इसके थ्रू ये फीड कर पाएगी क्योंकि ये एक जस्ट एक सरफेस है. तो अब इसमें हम सैंडफ्लाई डाल देते हैं यहाँ से.
These sandflies are starved for at least 10 hours, so the fly feeds on the patient. So the cup is filled with sandflies by using the aspirator and the lid is covered with a screen tied with a rubber band. Then the cup is tied on the hands and legs of the patient. He tied this on my hand to demonstrate and it ends up looking like a watch with a very large dial.
जैसे ये हो जाएगा, तो आप अपना हाथ दिखाइए, आपके हाथ ऐसे, ऐसे करके यहाँ पे इस तरह से हम इसको बांध देते हैं. ठीक, और बांध करके उसको हाफ एन आवर के लिए छोड़ देते हैं. फीडिंग होती है, फीडिंग होने के बाद फिर हम इसको निकाल लेते हैं. आधा घंटा हो गया, हमारा टाइमिंग फिक्स है, आधे घंटे में हम इसको निकाल लिए. 60 to 72 hours ये ड्यूरेशन हमने फिक्स किए हैं. उसके बाद हम इसको डिसेक्ट आउट करते हैं और डिसेक्शन करने के बाद उसको हम चेक करते हैं कि एक एक सैंडफ्लाइज में पैरासाइट है या नहीं। अगर है तो एक जनरल एस्टिमेट लगाते हैं।
दे यूज क्वांटिटेटिव पीसीआर व्हिच हेल्प्स देम गिव अ बेटर एस्टिमेट एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ऑन 287 पर्संस हु अग्रीड टू बी पार्ट ऑफ द स्टडी। 77 हैड एक्टिव कालाजार, 26 हैड पीकेडीएल। द एक्सपेरिमेंट वाज डन व्हेन दे वर इन एक्टिव डिजीज एंड बिफोर द ट्रीटमेंट बिगैन। 184 पर्संस एनरोल्ड वर एसिम्प्टोमैटिक। They were actually seropositive, meaning they were found with positive for Leishmania antibodies, but not positive for active disease. This happened over a period of 3 years, between 2016 to 2019. 78% of the flies who bit active Kalazar patients were infected, and their guts were seen under quantitative PCR and found positive. About 88% of those who bit PKDL patients were positive and deemed infectious. Those with asymptomatic disease were not found to be infectious. They also found the probability of infection increased with the severity of Kalazar, meaning when the parasitic load was higher in the patient. Patients with nodular PKDL were found more infectious than the ones with macular PKDL. While Kalazar patients were more infectious, they also go for treatment sooner, so they do not remain infectious too long. If one assumes that they find good treatment on time. But PKDL patients could remain under the radar as it is by and large without symptoms, except it looks like a rash in the beginning. So these patients could remain infectious longer. In short, we cannot ignore PKDL as transmitter of the disease.
हम लोग जितना इसको स्टडी करते रहेंगे उतना और डायमेंशंस इसके मिलते जाएंगे। जैसे 2016-17 की स्टडीज जो है जेनेसिस ग्रुप का है, उसमें पॉपुलेशन डायनामिक्स में, उसमें मैं भी एक ऑथर, मैं खुद उसमें काम किया हूँ। तो उस में हम लोग जो पॉपुलेशन डायनामिक स्टडी किए थे कि जो हमारा सरफेस एरिया, जैसे कि अवेलेबिलिटी होम है, घर के अंदर लोग रहते हैं, दूसरा है कि कैटल सेड्स में एनिमल मिलते हैं, तीसरा मिक्स ड्वेलिंग्स, जैसे छोटे छोटे घरों में क्या है कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनके पास बड़ा घर हो, तो वो एक साइड में अपने रहते हैं और एक साइड में दो चार जानवर रखते हैं, बकरी या जो भी, तो इसको मिक्स ड्वेलिंग कहते हैं इसमें। अब इसके अलावा जो वेजिटेशन होता है या पेरीडोमेस्टिक एरिया जो होती है घर के बाहर, उसमें तो हमने ये चार पॉइंट्स लेकर के स्टडी किए थे और हमको चारों पॉइंट्स में अच्छा पॉपुलेशन मिला था। इवन ब्लड फेड भी हमको जो है आउटसाइड पेरिडोमेस्टिक एरियाज में भी मिला था। तो ये भी एक पॉइंट है। अब दूसरा क्या है,
हम छिड़क रहे हैं घर के अंदर,
हाँ
बाहर कहाँ क्या क्या,
हाँ
बोल नहीं सकते
एकदम, अभी नहीं कह सकते क्योंकि इस पर कोई स्टडी अभी नहीं की गई।
इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन आउटसाइड द हाउस, there's a chance that indoor residual spraying or IRS is perhaps not as effective. Most men in the villages sleep outside the house.
7 to 8 months, 50% of the population is sleeping outside in the villages.
अच्छा, सिर्फ ठंडी में अंदर सोते हैं।
सिर्फ ठंडी में अंदर सोते हैं और बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो सोएंगे। तो हमारा छिड़काव कहाँ होता है?
घर के अंदर।
घर के अंदर होता है। जो हमारा IRS है वो घर के अंदर होता है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो है अभी प्रेजेंटली में उसका जो है सिर्फ घर के अंदर ही है या उसके घर के बाहर उसका कितना डेवलपमेंट हो रहा है या कितना चेंजेस आया है उसके बिहेवियर में। ये जो कंट्रोल प्रोग्राम बना, जो कंट्रोल प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया, ये उसका बिहेवियर स्टडी करके ही डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि बिहेवियर पहले ये इंडोर फीडर थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे मॉस्किटो में देखा गया है कि मॉस्किटो एनाफिलीज जो था पहले, कि ये भी इंडोर फीडर थे, पहले भी ये इंडोर थे, लेकिन जैसे जैसे हम कंट्रोल प्रोग्राम्स हमारा यूज़ होता रहा, IRSN, LLIN, बाकी कंट्रोल चलते रहे, ये अपना बिहेवियर शिफ्ट किया फ्रॉम इंडोर टू आउटडोर। अब ये आउटडोर में भी मिलते हैं, उसी तरह से क्या सैंडफ्लाई भी अपना बिहेवियर चेंज कर रही है? क्योंकि हम उसको इंसेक्टिसाइड का प्रेशर दे रहे हैं, तो एक बिहेवियरल चेंजेस तो होना ही होना है, एक sort of resistance development.
The next big question in relation to the sandfly is to determine whether the sandfly is resistant to the pesticide used now, synthetic pyrethroid. The earlier pesticide used was DDT, which was disbanded in 2016 after complaints of large-scale resistance of sandflies against it.
उसके बाद अब हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव शुरू होता है इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस स्टडीज, इसके लिए हम लोगों ने जो है
उसके बारे में चिंता क्यों होने लगी है, मतलब कब से होने लगी है
इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस की चिंता क्यों होने लगी है?
हाँ, मतलब कुछ हुआ
नहीं
देखा है?
कुछ हुआ नहीं, एक्चुअली क्या होता है, देखिए ये प्रीएम्प्टिव स्टडी भी हम इसको नहीं कहेंगे, इट्स अ प्रॉपरली साइंटिफिक स्टडीज है, क्योंकि काला अजार हम जो देख रहे हैं वो इसकी हिस्ट्री से जब हम देखते हैं तो एवरी 15 टू 16 इयर्स अ रिसर्जेंस,
करेक्ट,
ठीक, 15 टू 16 इयर्स जब रिसर्जेंस होता है तो रिसर्जेंस
ये टाइम नहीं हुआ है सर,
ये टाइम नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है उसके भी तो कुछ रीजन होंगे कि नहीं हुआ तो उसका क्या रीजन है, और जब हुआ था तो क्या रीजन था, जब हुआ था तो उस समय एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन उभर के आया था, दैट की इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस इन द वेक्टर, हाँ डीडीटी रेजिस्टेंस, और कुछ ड्रग रेजिस्टेंस भी थे उस समय पे भी, 1970s की बात है, हमारा जो है नेशनल मलेरिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, वो नेशनल मलेरिया प्रोग्राम में सिर्फ मलेरिया के लिए डीडीटी स्प्रे होता था, हर जगह डीडीटी स्प्रे हुआ, उसका कोलैटरल बेनिफिट ये मिला कि सैंडफ्लाई पॉपुलेशंस भी डाउन हो गए, ठीक, और वो धीरे धीरे डीडीटी काला आजार के लिए भी यूज होने लगा, ये कोलैटरल बेनिफिट था मलेरिया नेशनल मलेरिया प्रोग्राम का। अब वो जब रिसर्जेंस हुआ इसका, उसके बाद धीरे धीरे इसमें फिर इसका प्रोग्राम बनाया गया, तब तक जब तक इसका रिसर्जेंस नहीं हुआ था तब तक वही डीडीटी कंटिन्यू चलता आ रहा था। हालांकि डीडीटी के लिए लोगों ने अभी रेजिस्टेंस डीडीटी के लिए हो रहा है, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स टाइम बाय टाइम आती गई थी, बट जब रिसर्जेंस हुआ उसके बाद ही जो है गवर्नमेंट ने अपना प्रोग्राम चेंज किया। उसी तरह से है मलेरिया में वही कंडीशन हुआ,
मतलब पूरा रिसर्जेंस होने के पहले वो कुछ चेंज नहीं किया गया,
पहले नहीं किया गया,
तो हम वो स्टेज में हैं
अभी
रिसर्जेंस तो हुआ नहीं है,
रिसर्जेंस हुआ नहीं है, बट जो मेन मकसद है कि हमने जो इंसेक्टिसाइड यूज किए वो इंसेक्टिसाइड मोड ऑफ एक्शन दोनों का सेम ही है जो डीडीटी का एक्शन था, इसीलिए हम ये मान के या ये साइंटिफिक कम्युनिटीज ये मान के चल रही है कि डीडीटी को रजिस्टर्ड होने में जितना समय लगा उससे कम समय लगेगा सिंथेटिक पैराथ्रोइड्स को रेजिस्टेंस होने के लिए।
कब से यूज कर रहे हैं
ये? हम 2016 से यूज कर रहे हैं सिंथेटिक पैराथ्रोइड्स। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सैंडफ्लाई जो है इस केमिकल से रेजिस्टेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर अभी मान लीजिए आज के समय में अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो आज हमें दूसरे केमिकल पे अपना एनर्जी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, लेकिन वो पता करना बहुत जरूरी है, वो रिसर्च होना बहुत जरूरी है।
राहुल एक्सप्लेन्स दैट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO हैज डेवलप्ड गाइडलाइंस फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस। दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड लैब प्रोसीजर, बट द बेसिक आइडिया इज टू चेक द एक्सटेंट टू व्हिच द पेस्टिसाइड किल्स द वेक्टर, इन दिस केस द सैंडफ्लाई।
WHO की गाइडलाइन के अनुसार है कि अगर मॉर्टेलिटी मींस डेथ 98% तक है तो वो ससेप्टिबल है, लेकिन 97 to 90% जो लेवल है अगर इस बीच में डेथ है या मॉर्टेलिटी है तो ये आपका पॉसिबल रेजिस्टेंस में आता है कि मे बी ये रेजिस्टेंट हो सकते हैं मे नॉट भी हो सकते हैं, ये इसमें और काम करने की जरूरत है।
और हम ये अभी कौन से स्टेज में?
अभी हम इसी स्टेज में हैं,
97 to 90।
Rahul says that this sandfly colony then becomes a gift that keeps on giving, in the context of research of course. It is used to understand sandfly's resistance to the pesticide.
Hamari colony jo hai base colony hai, basic base population ban gayi hai, kyunki 2015 ke baad se ye colony inbreed ho rahi hai yahi pe
aur exposure
ye without exposure hai, एनवायरमेंट से नहीं है, किसी इंसेक्टिसाइड से नहीं है, किसी अदर केमिकल से नहीं है।
The lab sandfly behavior will be compared to the wild sandfly behavior. What is most fascinating is that even though the disease will be considered eliminated perhaps this year, the researchers will keep on working on the questions related to the disease and the vector.